नेशनल चिल्ड्रंस कमिश्नर यानी राष्ट्रीय बाल आयुक्त ने चिंता जताई है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकारें युवा हिरासत में बच्चों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने में विफल हो रही हैं। ऐसी आकांक्षाएं हैं कि बहुत सारे बच्चे अनावश्यक रूप से बाल संरक्षण और युवा न्याय प्रणाली में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के चलते परिवारों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में युवाओं से जुड़ी हिरासत प्रणाली को संबोधित करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल चिल्ड्रन कमिश्नर का कहना है कि नॉर्दर्न टेरिटरी, तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में युवा हिरासत सुविधाओं में वर्तमान में कई प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं जो युवा लोगों की सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने में सरकारों की विफलता को प्रदर्शित करते हैं। एन हॉलन्स ने बाल संरक्षण सप्ताह को चिन्हित करने के लिए कैनबरा में गवर्नमेंट हाउस में बात की है। कमिश्नर हॉलन्स का कहना है कि बच्चों और उनके परिवारों को दशकों से निराश किया गया है। वे कहती हैं कि रॉयल कमीशन और पूछताछ की प्रमुख सुझावों को लागू नहीं किया जा रहा है।
20 suicide attempts and 285 occasions of self-harm in the first 6 months of this year alone in the Banksia Hill Youth Detention Centre in WA. These children have been frequently locked down in isolation in their cells for more than 22 hours per day, deprived of education, recreation and rehabilitation. While Banksia Hill requires urgent intervention, it's sadly not isolated. 5 years on from the Northern Territory Royal Commission, the serious problems in youth justice systems continue right across Australia. Official reports have repeatedly described the treatment of children in some youth detention centres as inhumane and degrading.
वे कहती हैं कि इसमें कथित बाल यौन शोषण के उदाहरण शामिल हैं, जैसा कि तस्मेनिया के एशले यू डिटेंशन सेंटर में पहचाना गया है। न्याय प्रणाली के विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य बताते हैं कि समुदाय आधारित पुनर्वास बच्चों की सुरक्षा और समर्थन का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन कमिश्नर हॉलंड्स का कहना है कि इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया भर की सरकारें उन तरीकों पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है जो काम नहीं कर रहे हैं।
We are wasting public money because locking up children does not reduce crime. Other countries have implemented community-based welfare approaches shown to reduce youth offending and to keep the community safer. This community-based early intervention and support works better to reduce youth offending than even the best rehabilitation programs provided in prisons.
Australia में बच्चों के लिए कोई मंत्री नहीं है, जैसा कि कमिश्नर हॉलंस ने अपने संबोधन में कहा था। युवा न्याय प्रणाली में वंचित परिवारों के बच्चे अधिक नजर आते हैं और यह मुद्दा फर्स्ट नेशन के बच्चों में अधिक देखने को भी मिलता है। कमिश्नर हॉलंस का कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय योजना की कमी के कारण उनकी आवाज नहीं सुनी जा सकती और उनकी जरूरतों को पूरा भी नहीं किया जा सकता है।
We need to redesign our basic services by listening to children and families about what will help them. Children say they want to go to school, but they feel they don't belong, and families don't feel welcome. OECD research has found that students from families with higher socioeconomic status are more likely to feel a sense of belonging at school. In Australia, this gap has grown wider, and we know that disengagement from education is a key risk factor for serious problems like youth crime.
नेशनल जस्टिस प्रोजेक्ट के सीईओ जॉर्ज न्यूहाउस बताते हैं कि कभी कभी अपमानजनक वातावरण पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।
Another very important issue is the fact that governments don't resource prisons or youth detention properly. They don't provide proper medical or psychological care. They say they do, but it's nonsense. No one, I've never seen a youth detention centre in Australia that has provided proper psychological care and counselling to its inmates. And the unions protect the bad behaviour of prison guards and detention centre guards. These problems together come in confluence to create a really toxic environment, and the people who suffer most are the kids.
रॉयल कमीशन ने एबोरिजिनल समुदाय के लोगों की हिरासत में हुई मौतों को देखते हुए कुछ सुझाव दिए थे, जो उन इंडिजिनस बच्चों के लिए थे जो न्याय प्रणाली का सामना कर रहे थे। जॉर्ज न्यूहाउस का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो इन बच्चों को पहले ही खतरनाक स्थितियों से बचाएं।
To divert kids away from going into child protection and getting them back on track outside of the prison system and outside of the youth detention system, because it's never going to happen on the inside. You have a toxic environment which is one of brutality and abuse, and that is not one that is conducive to therapeutic care and rehabilitation. That can happen on the outside.
जस्टिस रिफॉर्म इनिशिएटिव की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मिंडी सोटीरी का कहना है कि ये अब युवा हिरासत को संबोधित करने का समय नहीं है, बल्कि समुदाय के नेतृत्व वाले निवारक कार्यक्रमों को राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ शुरू करने का समय है। डॉक्टर सोटीरी बताती हैं कि इन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप अक्सर बच्चों के बार बार अपराध करने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आती है। कुछ मामलों में ये 50% से घटकर 12% रह जाती है। वे कहती हैं कि सबूत से पता चलता है कि युवा हिरासत से इस समस्या में कमी नहीं आती है, लेकिन वास्तव में बार बार अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है।
And we know that at least 50% of children who go into prison today will go back to prison within 2 years. So, and that's replicated in the adult system. We know also that recidivism rates for children are really high the more times that you go to prison. So prison itself is what you would call criminogenic. That is, the more times or the more exposure you have to prison, the more likely you are to go back to prison.
Change the Record की executive officer Sophie Trevitt का कहना है कि हमें युवा हिरासत की प्रणाली में गंभीर बदलाव लाने की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा।
The youth justice system, as it's designed, is not capable of delivering the type of care and support that children and young people need, nor is it capable of keeping communities safe. Youth prisons further traumatize and re-traumatize children and their families and don't do anything to make community members safe. So I think if we're looking at the youth justice system, if we're accepting and acknowledging that we're in a state of crisis, that children are experiencing human rights abuses, workers aren't coping within the system, and we're not achieving the outcomes that we want in the community at large, there needs to be a real genuine reflection on how do we do things differently.
SBS News ki is report ko prastut kiya hai Natasha Kaul ne SBS Hindi ke liye.